आप लोग जानते हैं इधर भी काम पर कुछ लोग दो दो चार चार घंटा जाते हैं और आते आते रात हो जाती है, बहुत दूर दूर काम करने जाना पड़ता है। तो पिता उस बच्चे का काम करने जाता था तो सवेरे बिल्कुल निकल जाता था, बच्चा सोया रहता था। जब बच्चा सोया रहता था तो वो काम पर निकल जाता था, और जब उधर से आता था तब तक बच्चा सो जाता था। तो उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं, यद्यपि रोज गोद में ही सोता था, साथ में रहता था, लेकिन जब पिता निकलता था तब भी सोया रहता था और पिता आता था तब भी सोया रहता था। वो बच्चा 6 बरस का हो गया, इस तरह से बढ़ते बढ़ते उसने पिता को कभी देखा नहीं। एक दिन अकस्मात होलीडे रहा होगा, छुट्टी रहा होगा, उसका पिता सोया था दिन में, तो पूछता है, मदर हु इज दिस मैन। ये कौन है, ये कौन आदमी है, कौन सो रहा है? तो माँ ने कहा, ही इज योर फादर। अब तो इस समय कहना होता तो डैडी कहते या डैड कहते, कुछ कुछ कहती, तो वो तुम्हारे डैडी है तो तुम्हारे पिता, वो तुम्हारे, ही इज योर फादर। तो बच्चा पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, फादर का क्या माने है? तो माँ तो बिल्कुल घबरा गई कि अब क्या बताऊं कि पिता का क्या मतलब है। माँ चुप हो गई, बाद में कहे कि इनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। इनके द्वारा जन्म हुआ है, मैं तो तुमसे जन्मा हूं ना। वो लगा कहने, मैं तुमसे जन्मा हूं, तुम्हारा दूध पी रहा हूं, मैं तो तुमको जानता हूं, मैं तो इसको जानता नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा इसी तरह से हो कि माँ को जाने और पिता को न जाने, तो खैर ठीक है, माँ का कम से कम आदर कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा ज्ञान है। सारी सृष्टि में जो व्यवस्था है वास्तव में परम पुरुष की है, परम पिता की है, हम उनको नहीं जानते हैं, और प्रकृति की गोद में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम लोग प्रकृति को जानते हैं, माँ को जानते हैं, लेकिन पिता को नहीं जानते। जबकि माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी यदि पिता न सप्लाई करे वस्तुओं की और सारी व्यवस्था न करे, तो माँ क्या कर पाएगी? इधर की माँ तो खैर स्वयं जॉब करती है, काम करती है। तो भारत की माँ इसको समझ सकती है अच्छी तरह से कि बिना पति के आश्रय के वो कुछ करती नहीं। बच्चे को जो भोजन मिलता है उसके पिता का दिया हुआ है, जो उसको पैसा मिलता है या कपड़ा मिलता है, जो कुछ भी वो पिता देता है उसका, उसको माँ सजा करके, सिला करके या जैसे कुकिंग करके खिलाती है, देती है, वो बात दूसरी है, लेकिन सब कुछ पिता का दिया हुआ है। तो इसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी है वास्तव में श्री कृष्ण का दिया हुआ है। प्रकृति तो एक नाम मात्र है, पर सारा श्रेय लोग प्रकृति को देते हैं। कुंती महारानी जैसा विद्वान व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, वो जानते हैं कि आप आदि पुरुष हैं या प्रकृति के भी नियंता हैं, और इस कारण से अंतस्थ सर्वभूतानां, आप सभी जीवों के बहिरंत, बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। कुंती महारानी इस बात को समझ गई कि ये उत्तरा के गर्भ में भी गए थे और रथ पर भी बैठे हैं, यह भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। ये तो दो की बात तो बहुत दूर है, वो तो अनंत अनंत शरीरों में एक साथ रहते हैं कृष्ण। इसका उदाहरण भीष्म पितामह ने दिया है, जैसे इस पृथ्वी पर कोटि कोटि घड़ा रख दिया जाए, घड़ा मिट्टी का पात्र होता है, और उसको जल से भर दिया जाए, जितने सरोवर हैं, घड़ा हैं, सबको जल से भर दिया जाए, और सूरज उगता है तो सब में सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, सब जगह। तो इसी तरह से भगवान सबके हृदय में अवस्थित है, एक ही भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, वे सबके हृदय में है भगवान। बारंबार इस बात को कहते हैं, मैं सबके हृदय में हूं, और इसके साथ वे बाहर भी हैं। हृदय में तो है ही, बाहर भी हैं, मंदिर में हैं, श्री विग्रह के रूप में हैं, और प्रकट भी कई रूप में भगवान हैं। और वहां तो प्रकट थे, रथ पर बैठे हुए थे। तो कुंती महारानी कहती हैं, आप समस्त जीवों के भीतर भी अवस्थित हैं, बाहर भी हैं, तथापि अलक्ष्यम, फिर भी मूर्ख लोग आपको नहीं समझ पाते, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। जब इतना प्रकट सत्य हैं आप, तथापि आपको लोग नहीं पहचान पाते, बहुत दुख की बात। लेकिन कृष्ण, मैं आपको जान गई कि आप परमेश्वर, आप हमारे भतीजे का अभिनय कर रहे थे, मैं जान गई कि आप परम पुरुष हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही। अब भगवान सुनने लगे, और जब बुआ जी ने इतना हट किया और बोलने लगी तो क्या कहें। माया जवनी का छन्नम, क्यों अंतरहित रहते हैं भगवान? क्योंकि अपनी योग माया से आच्छन्न रहते हैं, आप अपनी योग माया से आच्छन्न रहते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि कोई अज्ञ व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि ये भगवान है। जैसे कंस के भय से जन्म लेकर के भागना, कभी कभी लोग सोचते हैं कोई लोग कि अगर भगवान हैं तो जेल में जन्म लेकर भाग क्यों गए। परंतु ये मूर्ख ये विचार नहीं करते हैं कि आखिर वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कैसे खुल गई, जेल के द्वार कैसे खुल गए, ताले कैसे टूट गए, पहरेदार कैसे मरे जैसे सो गए, जमुना कैसे मार्ग दे दी। ये सब भी तो विचारणीय बात है ना, ये विचारने लायक बात है। वसुदेव जी जेव ही कृष्ण को गोद में रखे तेव ही उनकी हथकड़ी खुल गई, पांवों की बेड़ी खुल गई, और लेकर के चले तो बिना खोले और बिना आवाज के द्वार खुल जाते थे। आगे जब निकले तो पहरेदार ऐसे सो गए थे, लगता था कि अब लास्ट इनका जीवन है, मरे जैसे सो गए थे, योग माया ने सुला दिया था। तो भगवान की यह लीला थी, न कि भय बस वो भागे थे। फिर काल जवन के भय से भागे, जरासंध के भय से भागे, नाम भी रणछोड़ हो गया, लेकिन फिर भी जितने भी महान पुरुष हैं वे रणछोड़ जी की पूजा करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति है, उल्टे और पूजा होती है। गुजरात में तो बहुत अधिक मान्यता है रणछोड़ जी की। अच्छा, इसके साथ साथ भगवान और लीलाएं की, जैसे उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया। तो आजकल के कामी दूषित हृदय वाले लोग कहते हैं, ये कैसा भगवान है जो आ करके इतनी स्त्री संग्रह कर रहा है यहाँ पर। क्या भगवान को कोई स्त्री वैकुंठ में नहीं मिलती है? यहाँ आकर इधर से संग्रह उधर से संग्रह, अरे दो चार रखती, 16,000 क्यों रख। हमसे एक स्त्री ने प्रश्न किया था ह्यूस्टन में, अमेरिका में। मैं प्रथम बार उस नगर में गया था तो प्रोग्राम हुआ, मैं भगवान की महिमा पर कुछ बोला, तो उस स्त्री ने बाद में प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया कि बड़ा कठोर शब्दों में बोली, वो पंजाब की थी इसलिए वो किशन कहती थी, कृष्ण नहीं कहते, ये किशन राधा को क्यों साथ में रखता है। मैं तो बिल्कुल चकित हो गया, ऐसा प्रश्न। मैं कहा क्या बात है, उसे रुक्मिणी को रखना चाहिए ना, रुक्मिणी उसकी विवाहिता पत्नी है, तो राधा को क्यों रखा है। मैं तो कोई इसका उत्तर भी नहीं जानता था। मैं अनवाइड होने लगा। तो फिर मैं चुप हो गया। तो पूछती है, आप किशन को भगवान मानते हो? तो मैं कहा कि नहीं, हमारे मानने की आप चिंता क्यों करती है, शास्त्र मानता है, सारे साधु महात्मा ऋषि मुनि सब मानते हैं कृष्ण को भगवान है, हम माने या न माने हमारे मानने का वैल्यू क्या। तो कि नहीं नहीं मैं भी मानती हूँ। तो जब वो भगवान है तो 16,000 स्त्री क्यों रखा है, वो पूछती है। जब भगवान है तो 16,000 स्त्री क्यों रखा है। तो कुछ प्रश्न ऐसे कर रही थी कि क्रोध उत्पन्न होने लगा मन में। एक बार जब उसने कहा तो मैं तो चुप रहा। दूसरी बार कहा कि भगवान होकर के और इतना स्त्री क्यों रखा है। तो मैं कह दिया, इसमें तुमको कोई दिक्कत है क्या? तब तक उसका पति भी आ गया, वो भी वैसा ही था, दोनों आर्य समाजी थे, वो भी उसी तरह ब्रह्मा ने बहुत सोच करके दोनों का विवाह कराया था। तो वो कहता है कि दिक्कत क्यों नहीं है, वो पुरुष आकर के बोलने लगा। मैं कहा कि कोई दिक्कत है क्या तुमको, तो पुरुष आकर के कहने लगा दिक्कत क्यों नहीं है। तो मैं कहा क्या दिक्कत है, तो है दिक्कत। इस पर मुझे बहुत क्रोध है, मैं कहा क्या दिक्कत है, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को 16,000 में से लिए थे क्या कृष्ण, कोई दिक्कत है ये कंप्लेन ला रहे हो मेरे पास? अब तो बात बिल्कुल गर्म हो गई। तो वो लोग लगे कहने, सन्यासी होकर के आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और मैं कहा ये लोग फ्री है कृष्ण को गाली देने के लिए ना, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग फ्री है कृष्ण को कुछ भी कह लीजिए। तो मैं कहा इसको क्या दिक्कत है, किसी दो चार स्त्री का भोजन कपड़ा इसको देना पड़ता है क्या, किसके परिवार क्या संबंधी की किसी लड़की को कृष्ण ले लिए जबरदस्ती, क्या किए, क्या दिक्कत है इसको, जब वेदव्यास देव को कोई दिक्कत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रेम से इस कथा को कहते हैं, विवाह की कथा को। नारद जी विवाह की चर्चा देखने गए, गृह चर्चा देखने गए, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इसको क्या दिक्कत हो गई। ये विचारणीय बात। एक व्यक्ति हमसे एक बार प्रश्न किया कि ये क्या भगवान किए कि दूसरे की स्त्रियों के चीर चुरा करके ले गए। मैं पहले तो कहा कि पता है तुमको कि वो दूसरे की स्त्रियां थी, वो तो कुमारिका थी, कन्याएं थी छोटी छोटी उम्र की, और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रही थी, तो उनके वस्त्र को कृष्ण कदम्ब पर लेकर के चढ़ गए। तो कहता ठीक है, क्यों लेकर के चढ़े, क्यों चीर चुराए। तो मैं प्रश्न कर दिया, ठीक है इसको तो रहने दो यहीं, द्रौपदी का वे चीर बढ़ाए थे इसको जानते हो? तो हाँ, वे कैसे बढ़ा दिए, कैसे बढ़ा दिए? तो कहता है वो इसको मैं नहीं मानता। आप देखिए, जब गोपियों के चीर चुराने की बात आती है तो कहता हाँ ये सत्य है और ये कृष्ण ने गलत काम किया, और द्रौपदी के चीर बढ़ाने की बात आती है तो कहता नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि सत्य बात हो। इसको श्रीपाद शंकराचार्य ने अर्ध कुकुट न्याय कहा है। एक ही शास्त्र के एक उक्ति को स्वीकार करना और दूसरे को नहीं स्वीकार करना, ये बहुत भारी गलती है। जो कोई व्यक्ति एक उक्ति को छोड़ करके दूसरे को स्वीकार करता है तो कोई भी अर्थ सही सही नहीं ले पाएगा। जिस ग्रंथ में लिखा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, तो भगवान के कर्मों की, भगवान के लीला की आलोचना भगवान समझ के ही करना होगा, न कि हम अपने स्तर पर भगवान को घसीट करके ला करके और उस स्टैंडर्ड से देखेंगे। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने एक अर्ध कुकुट न्याय लिखा है, ग्रंथ को मानना है तो पूरा मानो। तो कुकुट का अर्थ होता है मुर्गा। तो एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, तो मुर्गी अंडा देती थी, उस अंडा को कभी कभी वो खाता था, बेचता था। लेकिन उसके मन में एक बार बड़ा ऐसा विचार आया कि मुर्गी का जो अगला हिस्सा है, मुख का साइड है, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, पीछे वाला भाग बड़ा उपादेय है जिससे अंडा निकलता है, तो ऐसा करें कि अगला भाग काट कर फेंक दे, ये खर्च कौन करेगा, इधर दाना खिलाना ये करना ठीक नहीं है। अगला भाग काट देंगे तो दाना खिलाना नहीं पड़ेगा, केवल पिछले भाग से अंडा आता रहेगा। वह मूर्ख चाकू लेकर के और मुर्गी का अगला भाग काट कर फेंक दिया, तो वह अंडा आना भी बंद हो गया। तो इस तरह से शास्त्र के एक उक्ति को जो लोग स्वीकार करते हैं और दूसरे को नहीं, वे कभी शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण को भगवान मान करके ही चलना पड़ेगा, मानवीय धारणा पर उनको नहीं घसीटा जा सकता है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए जो रूल और नियम है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य उसको पालन कर ही नहीं पाएगा। जैसे हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई वायुयान जा रहा है, प्लेन जा रहा है, और नीचे कार में बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है रोड पर, तो रोड पर जाने वाला व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन करेगा, यदि लाल सिग्नल होगा तो रुक जाएगा, है ना। वो रुक जाएगा, जहां रुकना है रुकेगा, बाएं दाएं करना है करेगा। लेकिन वह कार चलाने वाला मान लीजिए देखे ऊपर पायलट को और वो कहे ये प्लेन चलाने वाला पागल हो गया, ये लाल देख करके भी नहीं रुक रहा है। एकदम ये तो बेवकूफ व्यक्ति है। अरे कितनी लाल बत्तियां रोड पर रहेंगी, लेकिन क्या बायवान वाला इसका पालन करेगा? उसकी स्थिति दूसरी है, उसका अधिकार दूसरा है। हमें जहाज चलाने वाले, प्लेन चलाने वाले को हम रोड के नियमों के पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तो सामान्य मनुष्य मनुष्य में अंतर हो जाता है, फिर भगवान में और मनुष्य में तो कोटि कोटि गुना अंतर है। जब भगवान की लीलाओं का विचार करना होता है तो प्रमाण देख करके चलना पड़ता है कि पहले के ऋषियों ने भगवान के विषय में क्या कहा है। तो जरा पता लगाइए श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा है कृष्ण के विषय में, निम्बार्काचार्य ने और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी ने, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं सब एक स्वर से कहते हैं कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, विभु है। और कोई कभी भी उनके चरित्र की आलोचना नहीं किया, कहीं भी नहीं, कहीं हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन आजकल के थोड़ी बुद्धि वाले मूर्ख लोग बात की बात में कृष्ण पर आक्षेप करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उनका आक्षेप उसी तरह से है जैसे कार चलाने वाला बाइवान चलाने वाले को कहे कि ये तो कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, वो कैसे करेगा? उसका अधिकार दूसरा है।